रात में सब लोगों ने विश्राम किया। महाराज भरत की तृतीय दिन रात भर नींद नहीं आई, कैसे भैया को ले जाऊं, कैसे उनको राज्य पर बैठाऊं, इसलिए सोच रहे हैं पहले गुरु जी की बात जाऊं। गुरु जी की आज्ञा को टाल नहीं सकते राम, इसलिए यदि गुरु जी कह देंगे तो जरूर ही वो लौट जाएंगे। और दूसरी बात, मैया कौशल्या है, इनके पास भी जाऊंगा और ये आदेश दे देगी मैया, तो वो कभी भी टाल नहीं सकते। और तीसरे कौन व्यक्ति हैं? महाराज जनक उनके ससुर और पिता हैं, महाराज जनक के दशरथ के समान, उनकी आज्ञा का ये भी विरोध नहीं कर सकते। आज बड़ी बात सब ठीक हुई है, मैं आज तीनों के चरण में जाकर के मैं निवेदन करूंगा जो राम को आदेश दें जो वो लौट जाएं। सीता जैसी कुमलांगी और ये बिना जूती के और कहां कहां घूम रहे हैं राजकुमारी खाली पैरों में, और ये राम सन्यासी का वेश बिना करके और खाते क्या हैं, कोई फल मूल मिल जाए तो खा लिया, ने उपवास रहे। और पहाड़ियों पर जिस पर हम लोग नहीं चल सकते, हम विंध्याचल और उधर की पहाड़ियों में गए, हम लोग जूता पहन करके भी नहीं चल सकते, बिच्छू और जानवर सांप इत्यादि भरे पड़े, बड़े नोकीले नोकीले पत्थर, और उसमें खाली पैर चल रहे हैं, सुन करके हृदय कांप जाता है। पर जिन्हें रात भर सोचते रहे ऐसा करूंगा ऐसे ले चलूंगा, दूसरे दिन सवेरे नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद में फिर राम के पास में गए, किंतु कोई बात बनी नहीं। रात में फिर आज गए गुरुजी के पास में, गुरुजी हमारा एक निवेदन है, निवेदन है कि अयोध्या के लिए, पूर्ववासियों के लिए, जगत के हित के लिए, मेरे हित के लिए, हमारी माताओं के हित के लिए आप राम को आदेश दे दीजिए जो वो अयोध्या में लौट करके राज सिंहासन को लें। मैंने कहा जे बात तो सहज नहीं है बेटा, मैं चाहता हूं कि राम सीता और लक्ष्मण के साथ में लौट जाए, मैं तो चाहता हूं, किंतु बात कैसे बने? तुम भी जैसे प्रेमी हो राम के भक्त हो, राम भी धर्म धुरंधर हैं, उनको सत्य से डिगाना सहज नहीं है। महाराज दशरथ ने ऐसा कहा है, पिता का आज्ञा पालन करना छोड़ करके वो सहज ही नहीं जाएगा। तब एक बात है, यदि सर्वस्व कहीं जा रहा हो तो आधे को ही यदि लेकर के संतोष रह जाए तो बात ठीक है। जैसे जहां हमारे 1,01,00,000 रुपए की घटी हो रही है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, 50,000 में ही संतुष्ट होकर के अच्छा 50,000 तो हाथ में आया उसके लिए ही चेष्टा करेगा। तुम एक बात करो, तुम राम के चरणों में ऐसा कहो कि भैया जी आपके बदले में हम और शत्रुघ्न जी जा रहे हैं वन में पिताजी का आदेश पालन करने के, और आप सीता और लक्ष्मण जी लेकर के आप लौट जाइए और ये तिलक करने के लिए राज सिंहासन के लिए सारा सामान हम ले आए हैं, मंगल की वस्तुएं, तीर्थों का जल और सब जल जो आपके राज्याभिषेक के लिए मंगाया गया था सप्तपुरियों से, कहां कहां से, समुद्र से, वो सारा का सारा चीज मैं ले आया हूं, ब्राह्मण भी आया है, वो सब आपका राज तिलक कर देंगे और आप अयोध्या का पालन कीजिए और हम और शत्रुघ्न जी आपके आदेश को पालन करें। उन्होंने कहा बात तो बड़ी अच्छी है भरत जी, ठीक है मैं राम से कहूंगा ऐसा, मैं तो ये कहूंगा यदि ये भी नहीं मानते तो लक्ष्मण जी के बदले मैं उनके साथ में रहूं, हमको लेकर के हो जाए और लक्ष्मण जी को सीता जी को लौटा दें। यदि ये भी नहीं मानते हैं तो हम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों वन को जाते हैं और सीता जी को लेकर के लौट जाएं, हम इसमें भी राजी हैं, किंतु किसी प्रकार से राम लौट जाएं। अच्छा तो कल ये बात देखी जाएगी, आप नहीं कहेंगे आदेश नहीं देंगे। अरे बेटा तुम कैसे कहते हो, मैं कैसे आदेश दूं, राम तो सत्य के पथ में है, धर्म के पथ में है, उसको अधर्म कैसे कराऊं? पहले बात वो मान तो जाए तब फिर देखी जाएगी। कौशल्या के पास में गए रात में 12 बजे रात में। मैया तू अभी तक जग रही है? तो बेटा मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती। तू कैसे आया? तो मैया तू एक बात कर, तुम अपने बेटे को राम को ये कह दो कि अयोध्या में लौट जाए और राज्य ले ले। बेटा मैं कैसे कहूं? कैसे नहीं, मैं अधर्म की बात कर रहा हूं? मैं गलत बात कहता हूं? नहीं, बात तो तू ठीक कहता है, तेरी बात को कौन काट सकता है, तुम ठीक कह रहा है, ये तो जरूर होना चाहिए, तुम्हारे तरफ से ये ठीक है। किंतु वो भी तो पिता और मैया दोनों की बात मान करके आया है। मैं कहती, यदि केवल कह कही कहती तो मैं कह देती, किंतु उसमें महाराज दशरथ तुम्हारे पिता का भी कुछ राय थी, इसलिए मैं नहीं कह सकती, क्योंकि पिता का वचन वो मान करके गया है, उसका पालन करने के लिए मैं कैसे कहूं जो धर्म को छोड़ करके असत्य पथ पर आए। वहां से भी बात नहीं बनी। रात में ही सुनैना के पास में गए। सुनैना जी सीता जी को लेकर के बड़ी व्यस्त थी, रो रही थी। ये सन्यासी का वेश बना करके, चीर पहन करके और राम के साथ में पैदल घूम रही है, कीड़े मकोड़े सर्प राक्षस से भरा हुआ ये और उसमें जा रही है, कैसे जिएगी कैसे रहेगी? इसलिए वो भी नहीं सो पाई। देखा उनके घर में दिया टम टिम टिमा रहा, वहां पर पहुंचे भरत, उनके पैरों में गिर गए, बोले जी मैया तू भी मेरी मैया है। महाराज जनक आए हैं, जनक के आदेश को वो कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए आप जनक जी से कह दो तुम्हारी बात मानेंगे कि वो आदेश दें कि वो अयोध्या को लौट जाए। अच्छा तो ठीक है, मैं तो चाहती हूं, तो मैं जनक जी से अपने पति से मैं कल सवेरे मैं बतलाऊंगा और वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, वो राम को कहेंगे आदेश देंगे। ठीक है, भर जी गए। फिर रात सवेरा हो गया, नहीं सो सके। आज सभा बुलाई गई, स्नान करने के बाद में सभी लोग वट वृक्ष के नीचे में बैठे। महाराज जनक एक तरफ में बैठे, बल वहीं पर विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और ऋषि लोग उनके सामने बैठे, सामने जैसे रामचंद्र जी हैं तो सामने वो लोग बैठे। एक तरफ में अयोध्यावासी माताएं सब बैठी, भरत उसके सामने आगे बैठे, और एक तरफ में और सब प्रजाएं बैठी, मुनियों का समाज जैसा बड़ा ही सुंदर समाज बैठा। सब लोगों ने कहा यह भार महाराज जनक के ऊपर में दिया जाता है, आज के सभापति इस सभा का हो महाराज जनक, ये ब्रह्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, संसार से इनका कोई भी मतलब नहीं है, अतएव आज ये जो ऐसा निर्णय देंगे आज दोनों पक्षों को मानना होगा। राम ने कहा ये हमारे पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं और ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म की अनुभूति करने वाले हैं, इसलिए ये जैसा कहेंगे मैं बिना कुछ विचार किए हुए इनके शरीर इनके आदेश को सिर पर रख करके वैसा ही करूंगा। भरत की इस तरफ में जनक जी ने देखा, तुम्हारी क्या राय है? आप हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं और आप जैसा कहेंगे मैं आपके वचन को मानने के लिए, आदेश को मानने के लिए बाध्य हूं, जरूर सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं आप जैसा कहेंगे मैं मान लूंगा। ठीक है, उन्होंने ध्यान लगाया महाराज जनक ने, उनके गुरु शंकर जी हैं, वैष्णवानंद यथा शंभो शंभो उनको शंकर जी का ध्यान लगाया गुरु, आप जैसा कहेंगे वैसा कहूंगा, जैसी प्रेरणा देंगे, और उनको प्रणाम करके बोले देखो भाई मैं अपने निर्णय पर पहुंचा हूं, ये भरत का प्रेम अगाध समुद्र है, अगाध समुद्र प्रेम, और दूसरी तरफ राम का, राम जो है परम सत्यवादी धर्म के सुमेरु पर्वत हैं, धर्म या धर्म की मर्यादा के सुमेरु पर्वत हैं। भरत का प्रेम नियम मर्यादा कुछ नहीं जानता, वो केवल प्रेम प्रेम जानता है। राम के प्रति इनका अगाध प्रेम है, जिसमें राम के धर्म की मर्यादा डूब जाएगी, मर्यादा भी उसमें डूब जाएगी, किंतु डूब करके भी उसकी प्रेम की एक मर्यादा होती है। वो प्रेम की मर्यादा क्या है? वो अटल अटल रहेगा, उसमें भी कुछ मर्यादा है प्रेम में। आज मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, विचार करके, भरत की जीत हुई, इसके प्रेम की जीत हुई, और राम की मर्यादा उस प्रेम के ओशन में, असीम अगाध समुद्र में ये डूब गया। इसलिए भरत की मैं जीत कहता हूं। अब भरत जैसा कहे वैसे राम को करना है। अब सुन करके बड़े लोग सब प्रसन्न हो गए। जो भरत तो यही कहेंगे कि अब राजा आप बनिए और चलिए वहां पर। किंतु फिर जब सब लोग प्रसन्न हो रहे थे और मनी मन कर रहे थे अब तो राम हमारे साथ में लौटेंगे, उसी समय में फिर जनक जी ने कहा जी देखो प्रेम की भी एक मर्यादा होती है। क्या मर्यादा होती है? अपनी मर्यादा है। वो प्रेम की मर्यादा है कि जिसमें प्रेम है, प्रेमी पुरुष अपने आराध्य देव के प्रेम के लिए सर्वस्व त्याग करता है। वह देखता है कि हमारे प्रभु कैसे सुखी होंगे, बस और कुछ नहीं जानता। इसलिए भरत को चाहिए कि राम की रुचि समझें, राम किस चीज में प्रसन्न है वह करें, अपने मन से मत करें। भरत की जीत होने पर भी भरत देखें कि रामचंद्र जी को क्या करने से सुख होगा, कैसे उनका मन प्रसन्न होगा, ये भरत देखे और फिर वैसा करें। भरत जी ने कहा आज मेरी आंख खुल गई, आज तक मैं नहीं समझ रहा था। मैं समझ रहा था कि मेरे अयोध्या में राम के आने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं अपनी प्रसन्नता देख रहा था, राम का सुख नहीं देख रहा था। ये राम को कैसे सुख होगा? भक्ति किसको कहते हैं? भरत जी भक्त हैं और रामचंद्र जी क्या हैं? आराध्य हैं। अन्न अभिलाषिता शून्य, जिसमें किसी प्रकार से अपने सुख की लालसा न हो, आराध्य देव सुखी रहे, बस ये भाव रहे। तो प्लीज कृष्ण दैट्स वे नो वर्डली एनी डिजायर फॉर हिमसेल्फ, नो डिजायर एट ऑल। तो यहां तो मेरे अंदर में डिजायर है, भरत जी थिंकिंग दैट ओ देर इज सम डिजायर इन माई हार्ट दैट आई शुड बी प्लीज वेर राम शुड प्लीज आर नॉट। राम प्रसन्न है कि नहीं ये मैं नहीं देखता, मैं ये देखता कि अयोध्यापुरवासी और मैं प्रसन्न होऊंगा, ये मैं देख रहा हूं। आज मेरी आंखें खुल गई, हमारे जनक जी ने हमारी आंखें खोल दी। प्रेम का यह रीति नहीं जो मैं सोच रहा था, अपना सुखी ये नहीं, बल्कि हमारा आराध्य देव कैसे सुखी होगा ये देखो। अब वो रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले जी प्रभु आप क्षमा कीजिए, आपको कष्ट दिया, आप किस में प्रसन्न हैं ये बतलाइए, क्या करने से अब मैं वही करूंगा, आप आदेश दीजिए, अब मैं आपको निवेदन नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे जिसमें आप प्रसन्न होंगे वही मैं करूंगा। राम ने कहा महाराज जनक ने तो कहा है जे तुम जीत गए मैं हार गया, तो सचमुच मैं हार गया, तुम जीत गए हो, इसलिए मैं अयोध्या का राज्य मैंने ले लिया, मेरा अभिषेक हो, मैं अयोध्या का राजा बन गया, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। किंतु मैं ये चाहता हूं कि पिताजी का आदेश भी पालन हो, इसलिए 14 वर्ष के लिए तुम हमारे प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का पालन करो और मेरे लिए प्रतीक्षा करो, हमारा बन करके, मैं ही राजा हूं तुम नहीं, तुम सेवक की भांति तुम रहना और अयोध्या की रक्षा करना, प्रजाओं की रक्षा करना, और धर्म का प्रचार जैसे हो, सब लोग धार्मिक हों, प्रजाएं सुखी हों, ऐसा करना, अपनी बुद्धि को और अपने कर्म को हमारी सेवा में लगाओ, ऐसा नहीं कि कर्म और ज्ञान भक्ति को दबा दे, ऐसा नहीं। कैसे दबता है? दबता है इसके बहुत से उदाहरण है, मैं कल बतलाऊंगा, आज समय हो रहा है 10 बजने को है, इसलिए संक्षेप में बतला रहा हूं। कभी कभी कर्म के द्वारा भक्ति दब जाती है। श्रुतियों में लिखा है माता पिता का आदर करना चाहिए, किंतु प्रहलाद महाराज अपने पिता का यदि आदेश पालन करता के पिता के परम पिता के विश्व के पिता है, ब्रह्मा इत्यादि के पिता है, इसलिए पहले उनका होना चाहिए। हिरण्यकश्यप तो बाधा देता था, इसलिए तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजव कंत बन ब्रजतन भय जग मंगलकारी। तजव पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने क्या किया, अपने पिता का प्रत्याग किया क्योंकि भगवत विरोधी था। मैया का किसने प्रत्याग किया, महाराज भरत ने। गुरु का कौन प्रत्याग किया, जो भगवान के भजन में बाधा देते हैं, सत्संग में जाने नहीं देते, उनको मना करते हैं अपने शिष्यों को, ओ कोई वैष्णव आए हैं उनके सभा में मत जाना, सुनेगा तो उनका बन जाएगा, हाँ फिर हमारा जो लाभ रुपया पैसा और प्रतिष्ठा थी वो नहीं मिलेगी, वो मना करता है। उनको भी दूर से प्रत्याग कर दो। एक क्षण में भाई को किसने प्रत्याग किया, विभीषण ने अपने भाई को भी, रावण को उन्होंने प्रत्याग करके रामचंद्र जी की तरफ में आ गए। बले गुरु तजब कंत बने ब्रजतन, और ब्रजबंताओं ने अपने पतियों को प्रत्याग कर दिया जो कि भगवान के भजन में बाधा देते थे, उनको भी छोड़ दिया, सबका कल्याण हुआ। तुलसीदास जी ने मीराबाई को ये पत्र दिया था, उन्होंने पूछा था कि हमारा पति हमारे घर वाले विरोधी हो रहे हैं, क्या करूं, उन्हें सबको छोड़ करके भगवान का भजन करो, जब तक संसार अनुकूल है ठीक है, नहीं तो उनको छोड़ देना ही कर्तव्य है। इसलिए माता पिता भाई बंधु यदि भगवान में विरोध करते हैं तो वो भी, यहाँ तक कि गुरु को भी छोड़ देना चाहिए जिसके लिए हमने भजन किया, और यदि उसी के भजन में गुरु बाधा देते हैं, गुरु को भी प्रत्याग करना उचित है। इसलिए भरत रामचंद्र जी ने कहा, देखो मैंने राज्य ले लिया, अंगीकार कर लिया, 14 वर्ष के लिए तुम मेरे प्रतिनिधि हो और ये सारे राज्य को तुम पालन करो। 14वां वर्ष पूरा होते ही उसी दिन, एक दिन विलंब की नहीं करूंगा, और यहां पर आकर के तुमसे राज्य ले लूंगा और फिर हो जाएगा ठीक। भरत जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो भी करूंगा, मैं अयोध्या को लौट रहा हूं, आप कृपया अपने प्रतिनिधि रूप में अपनी खड़ाऊं की जोड़ी दे दीजिए। रामचंद्र जी ने अपने खड़ाऊं उनको दे दी और उन्होंने सिर पर ले लिया और ले करके अपनी माताओं के साथ में सबके साथ में लौट गए। ये भक्ति है। भक्ति क्या हुई, तन से मन से वचन से अपनी सारी इंद्रियों से भगवान को सुखी करने के लिए जो हमारी सब चेष्टाएं हैं सब उनके लिए हो, और अपने हृदय में उस भक्ति के लिए जो साधन कर रहे हैं अपने लिए कोई भी कोई कामना ना हो, कोई भी डिजायर होगा तो सकाम भक्ति हो जाएगी, भक्ति नहीं रहेगी। और तीसरी चीज, कर्म और ज्ञान के द्वारा ढकी नहीं हो, बल्कि उसका सारा कर्म जो शरीर के द्वारा हो रहा है, मन के द्वारा हो रहा है, वो सभी प्रभु के सुख के लिए हो, तब ये उत्तमा भक्ति होती है। अब इसका उदाहरण हम कल श्रीमद्भागवत से आप लोगों को सुनाएंगे। आज समय हो गया है, अभी कीर्तन करके आरती करके हम लोग समाप्त करेंगे। आज नगर संकीर्तन शायद नहीं हुआ, कल आप सभी लोग टुडे प्रहत्नो नगर संकीर्तन, आई वॉन्ट दैट ऑल शुड गो, ऑल शुड गो, आई डोंट वॉन्ट दैट यू शुड नॉट गो, वेदर राम विजय प्रभु और एनी वन, आइदर पुंडरीक प्रभु और एनी वन, आई वॉन्ट दैट यू शुड ऑल गो। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट सुबह निवासी, वो भी जिनको समय हो, जो अपने काम पर नहीं जा रहे हों और उनकी कल छुट्टी हो, तो इनके साथ में सहयोग करेंगे। बहुत दूर से हम लोग आए हुए हैं, इसलिए आप लोग भी जिसको सुयोग हो वो करेंगे। इसमें एक हरिनाम करने से ही संसार से में हमारा उन्नति का कारण बन जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने नगर संकीर्तन की कहा, सहज रूप में इस नगर संकीर्तन से होता क्या है कि जीव जतने हैं, जंतु हैं, घास हैं, पेड़ हैं, जो सुनना नहीं चाहते, जो नास्तिक भी हैं, उनके कानों में यह आवाज जाएगी और क्या करेगी, जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आवाज को पकड़ती है करंट हवा की और अमेरिका से कोई बोल रहा हो करंट के माध्यम से वो हमारे यहाँ पर पहुंच जाती है, होता है ना। ऐसे ही भगवान का नाम जो हम करते हैं, संसार में प्रदूषण फैला हुआ है, मारो काटो गाली गलौज राजनीति इत्यादि हो हल्ला चल रहा है। भारतवर्ष में जब वोट होता है, वोट इलेक्शन होता है, तो पार्टियां दिन रात शाउटिंग करती हैं, हो हल्ला मचाती है। केवल भारतवर्ष में नहीं, पटाखा छोड़ते हैं, बम छोड़ते हैं और हो हल्ला करते हैं। संसार में बुरे लोग दुष्कर्म करते हुए अमेरिका में न्यूयॉर्क में मैं गया, वाशिंगटन में गया, मैं वहां पर सड़क के किनारे घर में ठहरा था। रात में न्यूयॉर्क में उस सड़क पर देखा 50 लोग शराब पीकर परस्पर गाली गलौज मारा मारी, फिर पकड़ते हैं इधर करते हैं, नंगे बिल्कुल हो जाते हैं, होश नहीं। ऐसा था, मैंने देखा जी अमेरिका को मैं समझता था, जी सभ्य मैं तो समझता हूं कि दुनिया में सबसे असभ्य यदि कोई देश है तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। कुत्तों कुत्ते भी ऐसा नहीं कर सकते। अरे इसी से तो देखिए, मैं देख करके हैरान हूं, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका जैसे राष्ट्र के और अपने एक गर्ल ऑफिसर ऑफिस के ऊपर में मुग्ध हो गए, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सका, वो अपने देश का विश्व का क्या कल्याण कर सकता है कोई। मैं उन्हीं के लिए नहीं कहता जो ऐसे हैं, सबके लिए कह रहा हूं। ऐसे प्रदूषण जो फैल रहे हैं उनमें हरिनाम संकीर्तन किया जाए, वायु के माध्यम से सारे विश्व में फैल जाता है और उसमें विषाक्त जो जीवाणु है उसको शांत कर देता है। कैसे? एक सरोवर में पत्थर फेंक दीजिए, उसमें गोल गोल रेखाएं खींचेंगी और उसके अंतिम छोर में जाकर के छुएंगी, उसी तरह से वायु के करंट के माध्यम से ये जो साउंड है ट्रांसेंडेंटल साउंड, वो प्रवाहित होकर के विश्व के और छोर में ही क्या अनंत कोटि विश्वों को छू करके और उसमें जो मलिनता है जिसमें प्रदूषण है उस सबको दूर कर देगा, आपके चित्त को भी शांत कर देगा। इसलिए नगर संकीर्तन की चैतन्य महाप्रभु ने व्यवस्था की, उन्होंने कहा कि विश्व में जितने भी नगर गांव हैं सब जगह ये कीर्तन प्रचलित होगा। इसलिए हम लोगों का ये भी एक व्रत है कि उच्च स्वर से नगर संकीर्तन करें। जो गधे हैं घोड़े हैं, जो घास है पेड़ हैं पौधे, उनके भी कान हैं उनमें भी जाएगा, नहीं जानते तभी उनका कल्याण हो जाएगा, ऐसा ये हरिनाम है। इसलिए आप सभी लोग यू शुड मस्ट गो ऑल विदाउट फेल एंड इफ यू आस्क मी आई एम रेडी टू गो, बट कुछ मैं आसक्त हूं, मैं अधिक चल नहीं पाता हूं कुछ वजह से, इसलिए आप लोग जरूर जाने। तो मैं नगर संकीर्तन में 10-10 मील परिक्रमा में जाता था, परिक्रम करता था, अभी भी मैं कर सकता हूं, तो फिर मैं प्रवचन नहीं कर सकता ही, इसलिए तो इसलिए कल मैं नगर संकीर्तन भी होना चाहिए। और कल और परसों दो दिन है, आप अपने बंधु बांधव को कुटुंबों वालों को भी ले आएंगे, ऐसी सुंदर कथाएं हैं, कह देंगे कि भाई पैसा वो नहीं मांगेंगे, पैसे के लिए मत डरिए। और समय भी तो उस समय तक तो दुकानें बंद हो ही जाती हैं, 7:30-8 तक आप लोग आ जाएंगे, अपने बच्चों को भी छल से बहाने बना करके उनको भी लाएंगे, दो दिन का आप समय है, इसके बाद में हम लोग दूसरी जगह चाहेंगे। इसलिए अब कीर्तन हो और इसके बाद में आरती करके समाप्त करना।
कीर्तन महामंत्र,
महामंत्र।